नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने धन के प्रवाह की मौजूदा और बदलती स्थितियों की कल समीक्षा के बीच आज के लिए 15 लाख करोड़ रुपए तक की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो वीआरआरआर नीलामी की घोषणा कर दी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार नीलामी आज सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच आयोजित की जाएगी और धनराशि 19 अगस्त को वापस होगी। ये घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को आयोजित 2 वीआरआर नीलामियों के बाद की गई है। पहली नीलामी में रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के मुकाबले 96,914 करोड़ रुपए 5.24% की कट ऑफ दर पर स्वीकार किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल ना हो। उन्होंने कहा कि अगर ओमान इस अहम समुद्री रास्ते पर अमेरिका के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता गुरुवार तक चलेगी। इसमें 14 देशों के 270 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 130 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।